रेडियो मधुबन पर आप तैयार हो जाइए अपने संस्कृत पाठ के लिए, जिसका नाम है पठामी संस्कृतम। मित्रों, पीछे हमने ये देखा कि किसी पूरे के पूरे श्लोक में कैसे सारी द्वितीया की ही विभक्ति लगी थी। कभी देखा कि चतुर्थी की विभक्तियां लगी थीं, कभी देखा संबोधन लगे हुए थे। आज मैं ऐसे 5-6 श्लोक तुम्हारे लिए ले आई हूँ, जहाँ से हमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन का बोध होता है। अर्थात जैसे हमने कहा था, देवः देवौ देवाः प्रथमा, तो देवः पुल्लिंगी एक वचन प्रथमा विभक्ति। तो ये 5-6 श्लोक ऐसे हैं, 12वें अध्याय में आते हैं भगवद गीता के, जिनमें इसी देवः शब्द की तरह सारे अन्य शब्दों के रूप हैं। पहले हम इन्हीं श्लोकों को पढ़ेंगे, तो एक तरफ से हमारी व्याकरण की भी पढ़ाई हो गई, दूसरी तरफ भगवद गीता की भी थोड़ी सी हो गई। ये श्लोक हैं 13 से लेकर के 19 तक, अर्थात केवल 7 श्लोक। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वर्णन किया है कि कैसे उनके भक्त होते हैं और कैसे भक्त उन्हें प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी। अर्थात जो सर्वभूतों के प्रति अद्वेष्टा है, द्वेष ना करने वाला है, किसी के प्रति जो द्वेष नहीं रखता है, जो मैत्रः अर्थात मैत्री का भाव रखता है, करुण है, करुणा का भाव रखता है, निर्ममो या निर्ममः अर्थात जो किसी में मोह या ममत्व नहीं रखता है, निरहंकारः जो पूरी तरह से अहंकार को छोड़ चुका है, समदुख सुखा जिसने सुख और दुख के प्रति अपनी भावनाओं को समान रूप से स्वीकारने की बात सीख ली है, ऐसा समदुख सुखा क्षमी जो लोगों को क्षमा करना जानता है। तो देखो, ये सारे के सारे एक वचन के शब्द हैं और इसमें जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द थे उनका वैसा ही रूप आया है जैसे देवः शब्द का रूप आया है। और ये शब्द हम फिर से गिनते हैं, मैत्रः करुणः निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुखः। और जो दो अन्य शब्द आए हैं वो हैं अद्वेष्टा अर्थात द्वेष ना करने वाला, और क्षमी अर्थात क्षमा करने वाला। अगला श्लोक भी हम देखेंगे, संतुष्टस्य ततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। जो सदा संतुष्ट रहता है, सतत ही जो संतुष्ट है, जो योगी है, और यत आत्मा जिसने अपने आत्मा को यत अर्थात संयमित कर लिया है, दृढ़ निश्चय जिसका अपने कर्तव्य के प्रति निश्चय दृढ़ है, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही जिसने अपनी बुद्धि तथा अपने मन को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, यह ऐसा जो मेरा भक्त है, यह मद भक्त ऐसा जो मेरा भक्त है, सच में प्रिय वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ फिर हम देखते हैं संतुष्ट दृढ़ निश्चय मद भक्त यह प्रिय, ये सारे रूप देवः शब्द की तरह हैं और बाकी थोड़े से एक वचन के दूसरे रूप हैं, जहाँ पर मूल शब्द अकारांत पुल्लिंगी नहीं हो करके किसी दूसरे तरह का शब्द है, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का रूप थोड़ा सा बदल गया है, जैसे योगी और यतात्मा। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच मे प्रियः। अब यहाँ पर यह फिर से देवाह की तरह हो गया, और हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः, जो हर्ष अर्थात खुशी, अमर्ष अर्थात दुख, भय अर्थात घबराहट, डर, उद्वेग अर्थात चिंता, इन सब से जो मुक्त है ऐसा भक्त, और यस्मान्नो द्विजते लोको, जिसके कारण यस्मात् न उद्विजते लोको, जिसके कारण लोगों को कभी उत्तेजना या उद्वेलना नहीं होती है, उद्विग्नता नहीं होती है। लोकान्नो द्विजते चयः, और लोगों के कुछ भी कहने पर जो स्वयं उद्वेलित या उद्विग्न नहीं होता है, अर्थात जो समाज में सामंजस्य बनाए रखता है, ना ही अपना आपा खोता है, ना अपने कारण दूसरों को उनका आपा खोने देता है, वह समाज में समन्वय और शांति बनाए रखता है, ऐसा जो मेरा भक्त है यह मुझे प्रिय है। आगे कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। जो अनपेक्ष है, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, शुचि और दक्ष, जो हमेशा अच्छी बातें सोचता है, शुचिर्भूत रहता है, पाप की बातें नहीं सोचता है, पाप को मन में भी नहीं लाता है, दक्ष जो अलर्ट है, पटु है, सावधान है, उदासीनो जो चिंताओं से मुक्त रहता है, जो किसी बात की चिंता नहीं करता है, गतव्यथः जो दुखों से भी मुक्त रहता है, जिसके दुख जा चुके हैं, ऐसा गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी, काम के आरंभ में ही वो परित्यागी है, अर्थात काम के आरंभ से ही उसने निश्चय कर लिया है कि वह कर्म फलों का त्याग करने वाला है, ऐसा जो मेरा भक्त है यो मद भक्तः समे प्रियः। मित्रों, यदि हम सारी विभक्तियों को अच्छी तरह से समझ लें तो हमें व्याकरण की पढ़ाई सरल लगेगी, और इसीलिए थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तो तुम्हें स्मरण होगा कि पहले भी हमने एक बार देव शब्द की सारी विभक्तियाँ अच्छी तरह से पढ़ी थीं। इन्हें थोड़ा सा रट लेना आवश्यक है, क्योंकि यह देव शब्द जिस प्रकार उसकी विभक्तियाँ बनती हैं, उसी तरह से सारे के सारे अकारांत पुल्लिंगी शब्दों की विभक्तियाँ संस्कृत में बनती हैं। तो एक देव शब्द की विभक्तियाँ याद करने पर हमें सैकड़ों ऐसे दूसरे पुल्लिंगी अकारांत शब्दों की विभक्तियाँ समझ में आने लगती हैं, या उनके रूप को हम बता सकते हैं। इसलिए हम अंत में देव शब्द की विभक्तियों को, सारे वचनों को अर्थात तीनों वचनों को, और सारी विभक्तियों को अर्थात आठों विभक्तियों को, इस प्रकार इन 24 शब्दों को हम एक बार फिर दोहराएंगे। तुम भी मेरे साथ दोहराओ और कभी इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवं देवौ देवान् द्वितीया, देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधनम्। तो ये तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आठों विभक्ति के देव शब्द के रूप हैं, इन्हें याद रखना। और इसी प्रकार जो उदाहरणात्मक शब्द हैं, उन्हें याद रखेंगे अगर हम, तो हमारी पढ़ाई बहुत सरल होती चलेगी। ऐसे दूसरे शब्द हैं, स्त्रीलिंग के लिए लता, नपुंसकलिंग के लिए फलम, और पुल्लिंग में भी अलग अलग स्वरों के साथ, जैसे हरि शब्द ह्रस्व इकारांत है, भानु शब्द ह्रस्व उकारांत है। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों को हमें याद रखना होगा, याद कर लेना होगा। और मैंने जैसे कहा था, संस्कृत की पढ़ाई बहुत ही मॉड्यूलर तरीके से होती है, अर्थात एक को याद करो तो उसी नियम से चलने वाली सैकड़ों बातें हमें समझ में आ जाती हैं। तो ऐसी पढ़ाई के लिए तुम्हें शुभकामना देते हुए हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तुम पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते भी रहो। नमस्कार।